राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 दिसंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम
का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता और गीता का सार ही शरणागति। सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वचः, ऐसे कह करके मन मना भगवतों का और स्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शरणं। तो भगवान के शरण हो जाना ये सार चीज है असली। अर्जुन ने जब स्वीकार कर लिया कि कैसे वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, फिर भगवान बोले नहीं। तो शरण होने पर क्या होता है कि जिसके शरण हो जाता है उसके रूप में ही रूप हो जाता है उसका। भक्ति की एक विलक्षण बात है ये। जैसे मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान मेरे से मेरा और कोई नहीं है, ये भाव दृढ़ होने से मीराबाई का शरीर नहीं मिला। किसी विचित्र बात है, डेढ़ 2 मन का ही बहुत सा शरीर है, वो शरीर भी नहीं मिला, भगवान में मिल गया। द्वारकाधीश भगवान के शरीर में ही मिल गया। ये जो एक सिद्धांत की बात है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, ये बात उसके शरीर से सिद्ध हो गई। कितनी विलक्षण बात है। जैसे भगवान का शरीर चिन्मय होता है, उसमें जड़ता नहीं होती, भगवान के सिवाय दूसरे शरीरों में शरीर और शरीरी का भेद होता है। जैसे गीता में शरीर शरीरी, देह और देही, देह वाला और देही, देह वाला देह, ऐसे जब परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो उसमें भी एक ही रहता है, परमात्म तत्व ही रहता है, परंतु भक्ति की ऐसी विलक्षणता है कि जड़ तत्व रहता ही नहीं, सब चिन्मय हो जाता, चेतन ही हो जाता। अलौकिकता है, ध्यान देने की बात है। मीराबाई को शरीर नहीं मिला, मुख में चुंदरी का छोर रहा, जिसे मालूम हो जाए कहां गई वो। तो भगवान के शीघ्र शरण हो जाने पर उसके वो शरीर ही नहीं रहा, कितनी अलौकिक बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर जिसका रह जाए वो शरण नहीं हुआ, ये नहीं मानना चाहिए। सबसे ये बात नहीं घटेगी, परंतु शरण होने पर उनका कुछ उसका कुछ अस्तित्व रहता नहीं है। ज्ञान के कोई संस्कार होते हैं ना, सत असत का विवेक कर चलते हैं, तो सत असत का विवेक चलने वालों की असत की एक सत्ता होती है। वो वास्तव में सत्ता नहीं है उसकी, परंतु विवेक करने में सत्ता रहती है। विवेक के अंत में जो बोध होता है तो असत की सत्ता मिट जाती है, सत्ता ही रह जाती है, केवल एक चिन्ह वैसा रह जाती है। तो चिन्मय तत्व रहने से उनके भीतर कोई विकार नहीं रहता। जब तक संसार की सत्ता जीतती है तब तक सर्वथा वो शरण नहीं हुआ संसार की सत्ता है ना। सर्वथा शरण होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं दी गई। वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। उसमें भला और बुरा दो कैसे होगा? तो क्या है कि जीव जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, जैसी भावना उतने फल होता है। तो वास्तव में अंत में निष्कर्ष ये निकलेगा कि परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। क्योंकि भेद होते हैं उपासना के, जगत नहीं है परमात्मा है, और जगत और परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, जगत भी परमात्मा ही है। ये दो प्रकार आते हैं और ऐसे चार प्रकार शेष जी लिखे हैं। अपना स्वरूप है, जगत नहीं है, और जगत अपना ही स्वरूप है। ये चार भेद हो जाते हैं। जगत नहीं है, परमात्मा ही है, और जगत भी परमात्मा ही है, और जगत नहीं है केवल मेरा सच्चिदान रूप है, और जगत सभी परमात्मा ही स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। ये तत्पद और त्वपद होने के दो भेद हो जाते हैं। दोनों बातें एक ही है। तो सब कुछ परमात्मा है ये जानने के बाद पूर्णता आ जाती है, क्योंकि गीता ने इसको पूर्णता बताई है। अद्वैत सिद्धांत में जो आजकल पठन पाठन होता है उसमें अहम ब्रह्मास्मि को मुख्यता दी है, मैं ब्रह्म हूं इसको मुख्यता दी है। गीता ने सब कुछ परमात्मा इसको मुख्यता दी है। ये भेद है उनमें, उनको मैं ही ब्रह्म हूं परमात्मा का स्वरूप हूं साक्षात, इसको मुख्यता दी है। दोनों का नतीजा एक ही निकलेगा, परंतु मैं ब्रह्म हूं इसमें मैंपन का परिचिन एक संस्कार है अनाधिकार, उसे वो संस्कार मिटना कठिन होता है। और वासुदेव सर्व ऐसा मानने से वो भेद मिटना सुगम है। इस वास्ते ऊंची साधना ये है कि परमात्मा ही है। दो तरह का वर्णन आता है, सत्य विभेदापगमेनाथ तवाहं नमामगीनस्त्वं सामुद्रो ही तरंग कृष्ण समुद्रो न तारंग। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि सत्य भी भेदापगम है, भेद नहीं है, भेद अपगम हो गया, निराकरण हो गया, एकता हो गई। ऐसा होने पर भी नाथ तवाहंग माम की तुम हे नाथ, मैं आपका हूं, मेरे आप नहीं, तो मैं आपका हूं मेरे आप नहीं, तो मेरे आप नहीं का कोई मामूली नहीं है। दृष्टांत देते हैं समुद्र ही तरंग, तरंग को समुद्र का तरंग कहते हैं, कुछ न तारंगों समुद्र समुद्र है, वो तरंगों का समुद्र ऐसा नहीं कहते, समुद्र की तरंग है, मानो समुद्र है वो सर्वथा वो परमात्मा है और जीव सब तरंग है। तो तरंग होने पर भी तरंग की सत्ता समुद्र की सिवाय नहीं है, अरे थोड़ी वो समुद्र की तरंग है, परंतु समुद्र व्यापक का नाम तरंग में उस परिचन छोटे छोटे का नाम भेद है नहीं। और आजकल के वेदांत कहते हैं कि अवधि अपार स्वरूप मम हरि विष्णु महेश, अपार अवधि समुद्र मेरा स्वरूप है, हरि विष्णु महेश विधि रवि संदास वरुण यम शक्ति धनेश गणेश ये सब लहरे है, मेरा स्वरूप तो समुद्र है और सब ये जितने देवते लहर है। तो वर्ण दो तरह से वर्णन हुआ उसमें, तत्व में एक ही मानते हैं, एक ही थे, एक तत्व का ही वर्णन है, परंतु एक तत्व का वर्ण इससे एक विलक्षण और है। समुद्र और तरंग की सत्ता देने से ये दूसरे का वर्णन होता है, समुद्र परमात्मा का स्वरूप और जीव लहरों के स्वरूप, और जीव वो एक मुक्त और कहता है स्वरूप मेरा समुद्र है, ब्रह्मा विष्णु आदि ये मेरी लहरा है। अभेद होगा ठीक, परंतु एक बात एक और विलक्षण है कि तत्व जल है, जल में न तरंग है न समुद्र है, न समुद्र में जल है तरंग है, न तरंग में समुद्र है, जल तत्व जल है, समुद्र और तरंग दोनों नहीं है, ये वास्तविक है, एक परमात्मा है। इसी को वासुदेव सर्वम का भगवान ये कहते हैं, सब कुछ तत्व परमात्मा है। जब तक दूसरी सत्ता अपनी दृष्टि में है तब तक ज्ञान नहीं है। शास्त्र का अध्ययन कर लो, ज्यादा ज्यादा कहते हो साधन कर लो, परंतु वास्तव बोध नहीं है। वास्तविक बोध होने पर फिर ये भेद नहीं रहेगा, एक परमात्मा तत्व वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुगुरुर्भवः, बहु नाम जन्म नाम अंते। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञानवान होता है उसे बहुत जन्म होते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्मों के बाद में ज्ञान योगी बहुत जन्म ऐसा नहीं है, किंतु बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान वासुदेव सर्वम इसी ज्ञानवान, ज्ञान का स्वरूप है ये, क्या ज्ञान है कि वासुदेव सर्वम इसी ज्ञानवान माम प्रपद्यते मेरे शरण होता है, सब कुछ वासुदेव है। तो बहु नाम जन्म नाम अंत्य का तात्पर्य क्या हुआ कि अब जन्म नहीं होगा, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है बस, तो संसार कहां से पैदा हुआ? इन व्यक्तित्व से ही मैं हूं इसे पैदा हुआ, तो मनुष्य शरीर से ही पैदा हुआ है और मनुष्य शरीर में ही अंत होगा। कर्म से मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं 16 जिला योनि और स्वर्ग और नरक, ये मनुष्य के किए हुए कर्मों के फल भोग होते हैं। यहां 84 लाख योनि मनुष्य योनि, यहां की दो बात हुई और एक नरक और एक स्वर्ग, ये परलोक की बात हुई। इस लोक और परलोक का जितना फल भोग होता है वो मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का ही होता है। पशु पक्षी आदि जोनिया है अथवा नरकों में रहने वाली जैसी जोनिया है अथवा स्वर्ग में रहने वाले जितने गए, इनके फल भोग होता है, कर्म कर्म नहीं होते। इस वास्ते है कर्म भूमि ये मानी जाती है, मनुष्य शरीर कर्म भूमि है और भोग भूमि, स्वर्ग भी भोग भूमि, नरक भी भोग भूमि और स्वर्ग योनि अनेक वो भोग भूमि। वो स्थान विशेष नरक है, ये योनि विशेष नरक है और मनुष्य शरीर है ये कर्म योनि है। कर्म योनि है एक दूसरी साधन योनि बताते हैं। तो कर्म योनि किन के लिए है? जो चक्र में चढ़े हुए गसा गसन काम काम आरभन से ऐसे जो प्राप्त होते हैं उनके लिए ये कर्म योनि है। परंतु वास्तव में मनुष्य योनि है ये साधन योनि है, ये एक पाठशाला है, इसमें पढ़ाई होती है। पाठशाला किस विद्या की? ब्रह्म विद्या की पाठशाला है ये, इसमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन होता है। इस विद्या के बाद कोई विद्या नहीं है, आखिरी ये विद्या है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नागंतुकम्। इससे अधिक कोई लाभ दूसरा होता ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता है नहीं, संभव ही नहीं। लाभ तो इससे बड़े कोई होता नहीं, दुख का संयोग भी योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग जो इसी योग संज्ञा है, दुख का संयोग स्पर्श मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं, ऐसे दुख संयोग भी योग है। तो दुख का तो स्पर्श ही नहीं और आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं। ये दो के लिए ही लोग सब उद्योग करते हैं, पशु पक्षी मनुष्य देवता असुर जितने गए सब राक्षस आदि सभी 84 लाख भूमि के भी सुख तो मिले दुख न हो इसमें लगे हुए सब। परंतु मनुष्य शरीर में साधना करके ऐसी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सुख तो आत्यंतिकम सुख, इससे बढ़कर सुख हो ही नहीं सकता, ऐसा सुख मिलता है। और दुख का वहां स्पर्श ही नहीं है, संयोग ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं। दुख हो ही नहीं सकता वहां। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा तहां नहीं मोह निशा लवलेशा। हमारे यहां एक दिन होता है, एक रात होती है, परंतु सूर्य भगवान के यहां एक प्रकाश रहता है। उसको दिन एक कह सकते हैं, दिन नहीं कह सकते, दिन सापेक्ष दिन नहीं कह सकते, रात और दिन वाला दिन वहां नहीं है, वहां तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तो प्रकाश को दिन कहे तो रात्रि की अपेक्षा होता है, प्रकाश कहे तो अंधेरे की अपेक्षा होता है, निरपेक्ष तत्व है। इस तरह से संसार में सुख और दुख दोनों है, परमात्म तत्व में ऐसा सुख नहीं है। मानो सूर्य में हमारे यहां दिन है जैसा दिन नहीं है, हमारे यहां रात है वैसी रात तो है ही नहीं, पर दिन भी ऐसा दिन नहीं है। दिन भी विलक्षण है, नित्य दिन है वो, दान रात्रि लौदेश मात्र में नहीं है। ऐसे उस परमात्मा में जो एक आनंद है, उसका प्रतिद्वंदी दुख तो है ही नहीं, पर सुख भी आत्यंतिक रूप है, निरतिशय सुख है, अनंत सुख है, अक्षय सुख है। ये विशेषण क्यों देते हैं कि हम लोगों की दृष्टि में सुख और दुख दो है, एक सुख का अभाव होता है एक सुख होता है, इस वास्ते कहते हैं कि वहां सुख का अभाव नहीं है। अंधेरा और प्रकाश दो होते हैं, वहां रात और दिन होते हैं, जहां केवल ही प्रकाश है वहां रात दिन वाला दिन नहीं है। ऐसे संसार का सुख और दुख है, ऐसा सुख नहीं है परमात्मा में। अनंत सुख है, अपार सुख है, असीम सुख है, अनंत प्रकाश है, अनंत ऐश्वर्य है। महिमा की बात जितनी कही जा सके उतनी भी कम है, उनसे ज्यादा है, वहां उसका वर्णन नहीं हो सकता। और वो इतना सुख मिलता है शरण होने से, भगवान की शरण हो जाए, उद्योग करके अपने पुरुषार्थ से हम करते हैं तो वो तत्व नहीं मिलता। मुक्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है, परंतु ऐसा जो अलौकिक आनंद है, अलौकिक विलक्षण है, वो कृपा से ही होता है, उसके शरण होने से ही होता है। अपने उद्योग में अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, अगर क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म हो जाता है, फिर रहता है, फिर मिट भी जाता है साधन कर जाते तो। परंतु भगवान के शरण होने पर भगवत कृपा से जो साधन होता है उसमें अहंकार नहीं रहती। इस वास्ते गीता में लोग इसमें द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम, भक्ति को निष्ठा नहीं बताया। भगवत भक्ति तो भगवत परायणता है कि भगवत परायण, ये साधक की निष्ठा नहीं है। अपने सब छोड़, भगवान की भी छोड़, ये सब सुख और दुख और बलार दुलार ठीक और बेठीक और गति अगति सब भगवान पर। तो ये शरणागति की बात विलक्षण है, भगवान के ही शरण हो गया, अपनी कोई चिंता नहीं। इस वजह से भगवान ने कहा, मां सोचो तू शोक मत कर, मेरी शरण हो जा, सब पाप से मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। तो जिसका शरण लिया है उसी के ऊपर उनकी शरण है। जो जाको शरण लियो ताका ताकि इलाज, उल्टे सर मसली से बेहोजात गजराज। तो शरण लेने पर तो शरण का साधन बड़ा बढ़िया है, शरण का साधन सरल है और बढ़िया है, उत्तम है। और अपना कोई उसमें दखल नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, गोस्वामी महाराज ने यहां से कह दिया है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर, आज भी अभी सुधर या अभी हो, ये राम को नाम जब भगवान को जाओ, कुसुम मत करो, भगवान से विरुद्ध हो वो बात मत उत्तर जी, कुसुम हो ये राम को नाम जप, भगवान की होगा भगवान के नाम को जप करो, तो प्रभु चरणों का आश्रय लेकर साधन करो। उस साधन में हरिश्वर ये ठीक है, भगवान ही हमारे जो आश्रय है, हमारे पूरे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव नारायण 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 माता रोमो मम पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में राम सुंदर दयालु गान्यम जाने नहीं जाने न जाने सब उस परमात्मा है नारायण नारायण।